श्री साई राम, साई वटना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
नंद किशोरा श्यामा गोपाला नंद किशोरा
फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भारतवर्ष में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है होली। नाम भी कितना महत्वपूर्ण है, होली। होली क्यों मनाई जाती है, कई कहानियां जुड़ी हैं इसके साथ। कैसे मनाई जाती है, हर प्रांत में अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन त्योहार को मनाने का कारण एक ही है, वो सामाजिक कारण भी है, जिसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं होली जब मनाई जाती है, पहले पहले जो पहला दिन होता है उस दिन होली का दहन होता है, लोग होली का जलाते हैं मंदिरों में। कई जगह लोग लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं, उसको जला देते हैं, जैसे लोहड़ी में होता है। कुछ अन्न के दाने गेहूं वगैरह उसमें डालते हैं या अन्न भुन जाता है। मंगल गीत गाते हैं, भजन वगैरह गाते हैं, लेकिन ये कथा शुरू होती है प्रहलाद से। हिरण्यकश्यप एक राजा था, अपने आप को संसार का भगवान मानता था। उसके पास बहुत शक्तियां थी। उसके बाद एक वरदान था कि कोई उसको मनुष्य हो या देवता हो उसको मार नहीं सकता, ना कोई उसको घर के भीतर मार सकता है, ना घर के बाहर, ना आसमान में, ना धरती में, ना दिन में, ना रात में, ना वो अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा। एक प्रकार से ऐसा वरदान मांगा हुआ था, कोई उसको मार ही ना पाए। इनकार आ गया। कई जगह ये भी कहा जाता है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, काफी रिसर्च कर रखी थी। एंड रिजल्ट यह हुआ, उनको अपनी उपलब्धियों पर बहुत ज्यादा अहंकार था। वे चाहते थे कि लोग उनकी पूजा करें, भगवान की नहीं। उनका अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान नारायण का भक्त था। एक छोटा सा बालक, पिता ने बड़ी कोशिश की पुत्र को समझाए, पुत्र मैं पूरी दुनिया को बोलता हूं कि मेरी पूजा करें और तुम नारायण की पूजा करते हो। पुत्र टस से मस नहीं हुआ। वैसे भी अगर देखें आज के दौर में भी आपके आपके बच्चे आपके बात मानते हैं। बच्चों की बात छोड़िए, क्या आपने अपने माता पिता की बात मानी थी? पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बस। प्रहलाद ओम नमो नारायण का जाप करते रहते थे। एक दिन बड़े क्रोध में आ गए हिरण्यकश्यप, ने कहा मेरे बेटे को मरवा दिया जाए तो बेटर है, वही अच्छा रहेगा, वही बेहतर रहेगा। कहते हैं प्रहलाद को पहाड़ से फिकवाया गया, नीचे गिरे तो वह फूलों की शैया बन गई, उसकी रक्षा हो गई। पानी में डुबोने का प्रयास किया, कई तौर तरीके अपनाए लेकिन मार नहीं पाए। अंत में एक विचार आया, या किसी ने विचार दिया, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी का नाम था होलिका, उसके पास वरदान था अगर वह अग्नि में भी प्रवेश कर जाए अग्नि उसको भस्म नहीं कर सकती, जला नहीं सकती, कष्ट तक नहीं पहुंचा सकती। या यूं समझिए कि होलिका के पास कुछ ऐसा दिव्य वस्त्र था, अगर वो अपने ऊपर लपेट ले, अपने ऊपर डाल ले तो वस्त्र उसकी रक्षा करता। आज के जमाने में कह सकते हैं जैसे एंटी फायर एलिमेंट है, कोई एंटी फायर गारमेंट है, क्लोथ है, या फायर रेजिस्टेंट कोई चीज है जो बहुत देर तक ना जले। लकड़ियां लगाई गई इकट्ठी, होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई या लकड़ियों के ढेर पे बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित की गई, धूं धूं करके लकड़ियां जलने लग गई। हुआ यूं कोई संयोग वर्ष या कारण वर्ष, जो वस्त्र को होलिका ने धारण किया हुआ था वो पुत्र के ऊपर गिर गया, प्रहलाद के ऊपर गिर गया। प्रहलाद बच गए, होलिका मारी गई, जल गई। या यूं कहिए कि वो दिव्य वरदान भी काम नहीं किया वहां पर, प्रहलाद बच गया, होलिका मारी गई। फिर कहा जाता है आगे जाकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरे भगवान क्या गड़गड़ में बात करते हैं? कोई चर्चा हो रही थी, प्रहलाद ने बोला कि मेरे परमात्मा, मेरे नारायण कण कण में बसे हुए हैं। क्या तेरे नारायण इस खंभे में बसे हुए हैं? उन्होंने अपनी तलवार निकाली, खंभे को काट दिया। वहां से नरसिंह अवतार बाहर निकल आए, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ये कथा है। नरसिंह अवतार ना जानवर से, ना मनुष्य से, ना देवता से, आधा धड़ जानवर का, आधा इंसान का। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांग में रख के दरवाजे के बीच में, ना बाहर ना अंदर, उस समय ना दिन थी ना रात, संध्या वेला थी, ना अस्त्र ना शस्त्र थे, अपने नाखूनों से उसको चीर के फाड़ दिया। कहने का तात्पर्य है, एक अहंकार ऐसी चीज है, दिन हो रात हो वह नहीं मरता। अहंकार को मारने के लिए अस्त्र भी काम नहीं करते हैं, शस्त्र भी काम नहीं करते हैं। देवता भी आपके अहंकार को नहीं मार सकते, मानव भी नहीं मार सकता, जानवर भी नहीं मार सकता, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न आसमान में, न धरती में, न अस्त्र थे, न शस्त्र थे, न देवता थे, न मानव थे। इन टोटैलिटी सब को जोड़ा जाए तो अहंकार को मानना कठिन होता है। तो हिरण्यकश्यप ने अहंकार का वध किया। दूसरी ओर जो हम कह रहे हैं, होलिका जल के भस्म हो गई, और जब होली की शुरुआत होती है पहले हम लकड़ियों का ढेर जलाते हैं, उसका इतना ही मतलब है, उसमें जो अन्न के दाने डाल रहे हैं, जब अन्न आप अग्नि में डाल देते हैं वो भुन जाता है, पहले रोस्ट होता है, उसके बाद जलता है। अगर अग्नि बुझ भी जाए, वो रोस्टेड व्हीट, रोस्टेड ग्रेन, बना हुआ अन्न दोबारा बीज का काम नहीं करता, दोबारा अंकुरित नहीं होता, इट विल नेवर स्प्राउट। हम ये कह रहे हैं जो दाना है जिसको भून रहे हैं, एक बार वो भून दिया गया वो अंकुरित नहीं होगा, आगे फल नहीं देगा। जब होली का दहन हो रहा होता है, जब लकड़ियां जला रहे होते हैं, उसमें जो अम डाल रहे होते हैं, उसका मतलब ये होता है परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा मैं अपने सारे कर्म और अग्नि में भस्म कर रहा हूं, मेरे जितने भी कर्म हैं, अच्छे या बुरे, सब कर्मों को हम परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। अगर अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल आएगा, पक्की बात है, बुरा होगा तो बुरा आएगा। मान लीजिए आपने सारे बुरे कर्म अर्पित कर दिए, अच्छे रख लिए, उन अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन उन अच्छे फल पाने के बावजूद भी क्या होगा, क्या आपका अहंकार नहीं बढ़ेगा? क्या हो सकता है अहंकार के वश में आके आपने गलत कदम उठा लिया तो? असल में होली का दान का अर्थ है आप अपनी सारी इच्छाओं को भस्म कर रहे हैं। सारी इच्छाओं को आप परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं, अग्निदेव को अर्पित कर रहे हैं, मैं भस्म कर रही हैं। जब तक इच्छाएं हैं तब तक समस्या रहेंगे। भगवद गीता के जहां तक मेरे को याद है दूसरे अध्याय में 62वां या 63वां श्लोक जो है यही कह रहा है, भाई अगर आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान लगाते रहते हैं उस चीज का मोह बढ़ जाता है। अब जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं उसका मोह बढ़ जाता है, मोह से उसमें काम आ जाता है, वासना आ जाती है, काम से उसमें क्रोध आ जाता है, क्रोध से आप भ्रम में पड़ जाते हैं, मन बिखर जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और मानव का पतन हो जाता है। विचार कीजिएगा आप कोई चीज को बार बार संसारिक इच्छा को लेके बार बार उसको सोचते रहेंगे उससे आपको अटैचमेंट हो जाएगी, मोह बढ़ जाएगा आपका, फिर उसको पाने की इच्छा इतनी जागृत हो जाएगी उसको काम कहा गया, काम वासना है, सेक्सुअल अर्जिस को भी काम कहा जाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध से आदमी इल्यूजन में आ जाता है, डिल्यूजन में आ जाता है, भ्रमित हो जाता है, उससे उसका मन बिखर जाता है, मन का संतुलन बिखर जाता है, मन का बैलेंस खराब हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसके बाद ठीक से काम ही नहीं कर सकता। तो हम अपनी सारी वासनाओं को सारी इच्छाओं को होलिका दहन में भस्म कर रहे हैं। होलिका दहन के अगले दिन होलिका मनाई जाती है, रंगों से खेला जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण विवाह करने के पश्चात जब लौटके आए वृंदावन में तो उनके स्वागत हेतु फूलों की वर्षा हुई। ये भी कहा जाता है कि गोपियां भगवान कृष्ण के साथ खेल रही थी, फूलों की वर्षा हो रही थी। कई कहानियां जुड़ी हैं लेकिन भगवान कृष्ण को लेकर जुड़ी हैं, इसलिए आपने सुना होगा या देखा होगा या अनुभव भी किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, वृंदावन में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जो रंग होते थे, जो फूल होते थे, रंग बिरंगे फूल होते थे, वो धीरे धीरे बदल के अब हो गए हैं रंग, गुलाबी रंग, पीला रंग, हरा रंग। पहले फूल होते थे या पत्ते भी हो सकते हैं। किसी शास्त्र में कहा गया कि वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता था, जैसे कि नीम के पत्ते होते हैं, ठीक है जी, उससे रंग निकाला गया। मेहंदी को घिसा गया हरा रंग आ गया, हल्दी को घिसा पीला रंग आ गया, चुकंदर को घुसा दूसरा रंग आ गया, चाय के पत्ते को घिसा तो एक ब्राउनिश कलर का आ गया, अंगूरों को आमला से काला रंग आ गया, पलश के पेड़ से किया तो ऑरेंज कलर आ गया या संतरी कलर आ गया, अलग अलग रंग आते थे। ये सारे रंग, ये सारे पदार्थ जिनसे रंग निकाला गया है, जिनसे रंग लिया गया है, ये आपके शरीर की त्वचा को स्वस्थ रखते थे। देखिए होलिका के टाइम, होली के टाइम एक मौसम भी बदल रहा होता है। आप सर्दी से गर्मी की ओर जा रहे होते हैं, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, शरीर में बदलाव आता है, आपको बीमारियां ना पकड़ लें, इससे आपकी त्वचा की रक्षा होती है। ये भी कहा जाता है, और रंगों की कहानी भी तो अपनी अलग से है। ये भी कहा जाता है कि होली का त्योहार जो है एक साल के अंत में आने वाला है, साल खत्म होने वाला होता है, कहते हैं भैया जो तुम्हारे अंदर कड़वाहट है औरों को लेके उसको निकाल दो, होली जो हो लिया फॉरगेट अबाउट इट, आपस में मनमुटाव है, आपस में झगड़ा है, होता नहीं, आप स्ट्रेस में जी रहे हैं, छोटी छोटी बात में दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ झगड़ के बैठ गया, बाहर कुछ भी नहीं, राय का पहाड़ बन गया, मुंह फुला के बैठ गया, अरे भैया छोड़ो यार, किसी ने बहुत सुंदर कहा कि दिस इज द मंथ ऑफ गिविंग एंड फॉरगिविंग, माफ कर दो, गले लगा लो दूसरे को, आगे बढ़ो, जीवन बहुत छोटा है लड़ाइयां करने के लिए, प्रेम से रहना सीख लीजिए, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। रंगों की बात करें, रंगों की बात, आपने कभी देखा कि ये जो रंग है सूर्य का प्रकाश जो है जिसे हम कहते हैं व्हाइट लाइट, अगर वो प्रिज्म में से जाता है वो डिस्पर्स हो जाती है, व्हाइट लाइट फैल जाती है साधनगों में, सतरंगी में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बाकी रंग को मिलाकर रंग बन जाते हैं। लेकिन ये खास सेवन कलर्स बताए गए हैं, सात रंग बताए गए हैं, सतरंगी। वायलेट क्या है? बैगनी कलर। वो रंग जो है वो सेल्फ नॉलेज के लिए एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, जागरूकता के लिए है। ये आपके मेंटल पावर देता है आपको, आपको एक शक्ति देता है कि आप अपने भीतर झांक के देखें कि आप भारत इस देश में आए क्यों हैं, इस दुनिया में आए क्यों हैं, आपका आने का कारण क्या है। आपको रास्ता देता है आगे बढ़ने का। जामुनी इंडिगो जो रंग है वो आपकी बोध शक्ति को, अनुभूतियों को बढ़ाता है, इंट्यूशन को, परसेप्शन को बढ़ाता है। राइट साइड ऑफ ब्रेन जो आपका है उसको एक्साइट करता है, एक्टिवेट करता है, आपको सहायता करता है कि आप अपने तीसरी आंख को ध्यान दें। अगला कलर रंग है नीला, ब्लू कलर। वो जो है भरोसा और जिम्मेदारी के लिए। देखा रहे भारतवर्ष में ज्यादातर विद्यालयों में व्हाइट एंड ब्लू कलर के ड्रेस यूनिफॉर्म होती है, कि ब्लू कलर इज द कलर ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग इस रंग को पहनते हैं देखिएगा आप, वो ज्यादा लॉयल होते हैं, ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं, और साथ साथ में जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके अंदर, उसका एहसास होता है। हरा रंग, ग्रीन कलर, बैलेंस, हार्मनी, ग्रोथ के लिए है, संतुलन के लिए है, सद्भावना के लिए है, विकास के लिए है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। पीला रंग, येलो कलर, कलर ऑफ प्रकृति, नेचर, माइंड एंड इंटेलेक्ट। भगवान कृष्ण भी पहनते हैं ना पीतांबर पीला रंग, वो आपके लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। वो आपके इनर सेल्फ को आगे बढ़ाता है, आपको प्रेरित करता है कि परमात्मा की ओर बढ़े। आपके अंदर हीलिंग कैपेसिटी आते हैं, कैपेबिलिटी आती हैं, आप लोगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं बीमारी के वक्त भी। संतरी ऑरेंज, कलर ऑफ एडवेंचर, सोशल कम्युनिकेशन, ऑप्टिमिज्म कहा गया, साहस का, समाज में कैसे वार्तालाप करें, कैसे दूसरे से मिलें, आशावादी बनाता है आपको, पॉजिटिव बनाता है आपको, आपको एक पॉजिटिव आउटलुक देता है लाइफ में, सकारात्मक कहा जाए तो बेटर है, बेहतर रहेगा। लाल रंग, रेड कलर, कलर ऑफ एनर्जी, पैशन, एक्शन, एनर्जी करते हैं ऊर्जा, पैशन करते हैं जुनून हो जाता है आपके अंदर, एक्शन, काम करना, कार्य करना, वो आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है, आपके अंदर दृढ़ शक्ति को बढ़ाता है। आप अपने जीवन के लक्ष्य को बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़े, दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं, एक डिसिप्लिन लेके आता है आपके अंदर, अनुशासन लेके आता है। आगे देखा जाए तो और भी रंग है, जैसे कि पिंक कलर गुलाबी रंग है, कलर ऑफ कंपैशन, अनकंडीशनल लव, नर्चरिंग भी कहा जाता है, दया का रंग है, बिना शर्त के प्रेम करने का रंग है, एक पालन पोषण करने वाला कलर है, रंग है। वो कहता है आपके अंदर जो प्रेम है वो पिंकिश कलर का है, उस प्रेम को सारे संसार में फैलाएं। ये सारे रंग मिल जाए तो बन जाता सफेद रंग। सफेद रंग क्या है? कलर ऑफ प्योरिटी, कलर ऑफ होलनेस, संपूर्णता, पवित्रता। वो आपके जीवन को पूर्ण करता है, पूर्ण का मतलब कंप्लीट, फुल। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवश्यते। कहते हैं ओम, जानते हैं पूर्णमदः, दैट इज फुल, वो पूरा है। पूर्णम इदम, ये भी पूरा है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, फ्रॉम फुलनेस कम द फुलनेस, पूर्ण से हमने पूर्णता को निकाला है। पूर्णस्य पूर्णम अदाया, अर्थात टेकिंग फुलनेस फ्रॉम द फुलनेस, हमने पूर्णता से ही पूर्णता ली है। पूर्ण इव अवश्यते फुलनेस रिमेन इंडीड, यानी कि तब भी वह पूरा रहता है। अगले दिन क्या होता है, मंगल मिलन मनाया जाता है, भगवान कृष्ण और राधा जी को झांकी बनाई जाती है, वो झूले पे बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण जो है प्रेम के स्वरूप है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको परमात्मा तक जाना है तो अपनी आत्मा के चोली के रंग को बदलो। आत्मा आपके भीतर है, उसके ऊपर चोली क्या है, चोली उसके ऊपर चोली जो है आपका शरीर है, शरीर को नहीं बोले कि आपका 8 फुट के फेंक दो, उसके ऊपर आपके वासनाएं हैं, मन है, उनको ठीक से रंगो। ये 6 शत्रु काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, इनको बाहर निकालो जो आपके आत्मा को ढक रहे हैं। आपका विचार ये करना है होली के समय कि आप कौन से रंग में रंगे हुए हैं, और आपको रंग चाहिए केवल प्रेम का, ईश्वर तक पहुंचने का, वो आपके भीतर है, वो आप कर सकते हैं। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, को हम से सो हम तक की यात्रा आप पूर्ण कर सकते हैं जब आप अपने भीतर बैठे देखें अपने भीतर और अपनी वासनाओं को भस्म करते जाएं होली के समय। अगर लोगों के साथ मनमुटाव होगा तब भी आपका जीवन यही कमी रह जाएगा, क्यों, यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग। आगे बढ़ना सीखें, पास्ट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, भूल जाओ उसको, फ्यूचर यू आर नॉट श्योर ऑफ, प्रेजेंट इज नाउ, सैंक्टिफाइड विद होली थॉट एंड वर्ड एंड डीड्स। इसलिए वर्तमान को परमात्मा में डुबो दें, आपकी होली आपको जीवन तक लक्ष्य तक ले जाएगी। जय सारा।